ओम शांति। अब हम फिर मिले हैं दोबारा से एक नए टॉपिक के साथ। हमारे बीच में डॉक्टर प्रताप मिड्डा जी पहुंचे हैं, जिनका टॉपिक है आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग। और इनकी पर्सनैलिटी से ही देखकर लगता भी है, और इनकी सचमुच पर्सनैलिटी ऐसी रही भी है कि अपनी डॉक्टरी लाइफ में रहते हुए भी इतना अच्छा हैप्पी लाइफस्टाइल बना के रखना और खुश रहना और औरों को खुश रखना, जहाँ भी इस समय जिनके साथ भी जुड़े हुए हैं, और इनकी पर्सनैलिटी से, इनके व्यवहार से, इनके कर्मों से, इनके बोलों से ऑटोमेटिक वो खुशी की लहर अपने आप ही आ जाती है। और वैसा ही वक्तव्य आप अभी इनसे सुनेंगे भी, समझेंगे भी। भाई साहब ने अपनी जीवन को समर्पित किया परमात्मा की सेवाओं के लिए 1991 में इस ईश्वरीय यज्ञ में। तब से आप इस ईश्वरीय यज्ञ में हैं। हमारा जो माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल है, आप उसके वर्तमान समय डायरेक्टर हैं, और डायरेक्टर होते हुए भी इतने लाइट और हैप्पी मूड में रहते हैं। आप कभी भी इनसे मिल लीजिए, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा मिलेगा। और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है मेडिटेशन की कि इतनी अच्छी पोस्ट पर इतना बड़ा कार्य संभालते भी हैं, लेकिन फिर भी बहुत लाइट रहते हैं। वो लाइट रहने के टिप्स आप भाई साहब से सुनेंगे, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग।
ओम शांति। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बताया कि यहाँ काफी लोग सीवन से आए हैं, तो मैं भी कनेक्ट कर पाता हूँ कि मैं सीवन से हूँ। बचपन मैंने सीवन में गुजारा है। पिताजी जॉब करते थे तो उनके साथ रहते थे, लेकिन जब भी छुट्टियां होती थी स्कूल की, तो तब तो यही होता था ना कि दादा दादी के पास जाना या नाना के पास जाना, तो सीवन में ही जाते थे, वो सीवन में रहते थे। तो सीवन से तो बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। सीवन की गलियां बचपन में बहुत मापी हुई हैं बहुत घूमे हुए हैं, बचपन में शरारतें भी की हुई हैं। मुझे अभी तक एक इंसिडेंस याद है, सरदार केसर सिंह होते थे, कारपेंटर थे वो, और वहां तो गांव में तो सब एक जैसे होते हैं। तो मैंने एक दिन उनको कहा, उनको चाचा जी कहते हैं, मैंने कहा चाचा जी मुझे गुली डंडा बना के दो। तो उन्होंने कहा नहीं बनाऊंगा। तो मैंने उनको पत्थर मारा, तो वो बाद में उन्होंने मुझे निशान भी दिखाया। बाद में जब मैं डॉक्टर बन के गया वो, तो उन्होंने मुझे निशान दिखाया कि ये वो निशान है जो आपने दिया था। तो बचपन की बातें भूलती नहीं है। और वैसे भी हम देखें, बचपन जो इनोसेंस का होता है, उनको कुछ नहीं पता होता बाहर क्या है, पराया क्या है, अपना क्या है, और क्या करना है क्या नहीं करना। बच्चे तो इनोसेंस से ही काम करते हैं। तो इसलिए ये जो इनोसेंस है, यही हैप्पीनेस का आधार है। आप क्या समझते हैं, खुशी कहाँ मिलती है? खुशी को ढूंढने हम कहाँ जाएं? अंदर, अपने अंदर। और कहाँ मिलती है खुशी? थोड़ा जोर से बोलें। फ्रेंड्स के साथ खेलो, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ। बच्चे तो हमेशा खुशी देते हैं, ये तो बात आपके बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखिए, बच्चे महात्मा होते हैं, बच्चे हम बहुत प्योर होते हैं। आप वैसे भी किसी पुराने परिचित से मिलें जिनके साथ आपका अनुभव बहुत प्लेजेंट रहा हो, और कई सालों के बाद मिलें, तो अनायास ही अचानक ही खुशी आ जाएगी। मुझे याद है, एक बार मैं चंडीगढ़ में वहां काम करता था, डॉक्टर था, तो 16 सेक्टर हॉस्पिटल में काम करता था। तो हमारे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते थे मिस्टर बत्रा। तो एक दिन उन्होंने मुझे अचानक फोन किया कि अपने दोस्त से बात करो। तो मैंने कहा किससे? और जैसे ही उसने फोन मिलाया, मैं उनके साथ फिफ्थ में पढ़ा था गुड़गांव में, मैंने उसको सीधा ही बोला कि तेरा ये नाम है। तो कनेक्ट कर सकते हैं, जो इनोसेंस है बचपन से, हम बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो खुशी का आधार ही यही होता है कि हम कनेक्टेड रहें। अब आप देखिए, जब हम किसी को मिलते भी हैं, तो मिलते हुए क्या कहते हैं? आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, आपसे मिलके हमें अच्छा लगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि कनेक्ट कर पाते हैं। तो हम कनेक्ट और खुशी ना होने का क्या कारण है? खुशी जब हम खुश नहीं होते, अपसेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उसका कारण क्या है? वो भी है। और क्या बताया आपने? मन का तनाव हो रहा है। ये बात बहुत अच्छी कही। देखिए, अगर हमारा मन अपसेट होता है तो जो चीज हमें बहुत प्रिय होती है, अपने बच्चे भी आके बात करेंगे तो उस समय हम उनको भी डांट देंगे, क्योंकि मन अपसेट है। मन जो है वो बहुत बड़ी चीज है। अब वो कहते भी हैं, हम कहते हैं ना, मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो यहां आपने आके ये तो समझा होगा कि मन भी क्या है। अभी देखिए, मन जहां लग जाता है तो वहां घंटों आप रहें, पता भी नहीं लगता कि समय कहां गया, और फिर कहीं आपको इंतजार करनी पड़ जाए तो वहां एक एक मिनट काटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मन वहां नहीं लग रहा। तो मन को भी क्या भाता है? जहां हमारी इंटरेस्ट होते हैं, जहां हमारी रुचि होती है, वहां हम कहीं से भी समय निकाल कर चले जाते हैं, कुछ भी करके जल्दी जल्दी सब कुछ समेट करके चले जाएंगे। लेकिन इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। आज हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बाहर विदेश में तो वो इस तरह से ही सेलिब्रेट करते हैं। अब आप देखिए मदर्स की विशेषता क्या होती है। मदर्स की विशेषता ये होती है कि उनका त्याग, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, संबंधियों के लिए त्याग करते हैं। तो जब हम किसी को कुछ देते हैं, किसी की कुछ संभाल करते हैं, उसमें भी बहुत खुशी मिलती है। और खास तौर पे जहां से आपको कुछ रिटर्न में मिलने वाला नहीं हो, स्ट्रेंजर हो, उसकी आप मदद करेंगे तो आपको कितनी खुशी मिलेगी। और हम अपसेट क्यों होते हैं? कभी कभी हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमारी आशाएं जब पूरी नहीं होती। मान लीजिए आपने सोचा कि कोई आ रहा है, दूर से आ रहा है, तो पहले आके मेरे को मिलेगा। अगर मान लीजिए वो कहीं और बिजी हो गया, आपको आके मिला नहीं, तो भी निराशा हो जाती है। ऐसे ही कुछ और भी हम स्थूल भी एक्सपेक्टेशंस करते हैं। जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, आशा पूरी नहीं होती, तो क्या होता है? तो अपसेट होते हैं, खुश नहीं रहते। तो यहां सिर्फ खुश रहने की बात नहीं है, लेकिन निरंतर खुश रहने की बात है। जो टॉपिक दिया ना, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, यानी जीवन कैसे जिया जाए। हम जीवन तो जीते हैं। अब किसी से आजकल पूछते हैं ना, आपका हाल चाल क्या है? कहते जो कट जाए वो अच्छा है, आम भाषा में यही कहते हैं। तो हमारे जीवन में जो फुलफिलमेंट है, भरपूरता, सब कुछ है हमारे पास। घर भी है, धन दौलत भी है, परिवार भी है, प्रोफेशन भी अच्छा है, लेकिन फिर भी वो फुलफिलमेंट नहीं है। संतुष्टता अंदर की कहां से आती है? कंटेंटमेंट जिसे हम कहते हैं, संतुष्टता हमें अपने आप से भी चाहिए, संतुष्टता हमें दूसरों से भी चाहिए। लेकिन संतुष्ट हम कब नहीं होते? किसी के नेचर ही क्रिटिकल होती है, हर चीज में फॉल्ट फाइंडिंग करता रहता है, वो संतुष्ट कैसे होगा? अब आप देखिए, हमारे जो हमारी लाइफ है, हमारा ये शरीर है, अब हम सांस ले रहे हैं, दिल हमारा धड़क लगा, हमें कुछ पता थोड़ी है, एक सिस्टम चल रहा है। लेकिन जिस दिन हमें थोड़ी सी ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, उस दिन क्या लगेगा? नेचुरल जो चीजें चल रही हैं, हमें अच्छा घर भी मिला हुआ है, अच्छा परिवार भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम फॉल्ट फाइंडिंग करते रहते हैं। अब जब हमें तो ग्रेटफुल होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं, तो हमें ये देखना है कि हम अपने आप को संतुष्ट कैसे बना सकते हैं। क्योंकि जब तक कंटेंटमेंट नहीं होगी, तब तक हैप्पीनेस भी नहीं आएगी। कितनी भी धन दौलत हो, लोग और कमाने में लगे रहते हैं, कहीं ना तो कहीं हमें भगवान का शुक्रिया मानना चाहिए कि हमें बहुत मिला है, एबंडेंस है, भरपूरता है हमारे जीवन में। जो कुछ भी है उससे हम संतुष्ट रहें, और हर एक की विशेषता को देखें, हर एक की देखें वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, परिवार में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, कैसे हमें मदद कर रहा है, क्योंकि जब कोई चीज हमारे पास होती है ना तो हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, लेकिन जब हमारे से दूर चली जाती है तब हम उसके लिए हम सोचने लग जाते हैं। तो हैप्पीनेस कैसे बिगिन की जाए, कैसे खुशी आए हमारे जीवन में, और वो भी खुशी कांस्टेंट हैप्पीनेस, लगातार हम खुश रहें, उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए क्या करने की जरूरत है। सदा खुश रहें। अभी देखिए सिचुएशंस, परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं। आज कुछ हैं, अभी 3-4 दिन जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं उनके लिए कितनी बड़ी टेंशन थी। कल सीज फायर हुई तो दिखाया कि लोग कैसे रिलीव थे। तो सिचुएशंस तो चेंज होती रहेंगी, टर्मोइल भी आएगी, तूफान भी आएंगे, कठिनाइयां भी आएंगी, जो अपने होंगे वो भी साथ नहीं दे पाएंगे, जब जरूरत होगी तब कोई भी नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी हम कंटेंटमेंट कैसे रहे, हम अपने आप को स्टेबल कैसे रखें। अभी गीता में भगवान ने जब कृष्ण को कहा योगी की सही पहचान क्या है, निंदा स्तुति मान अपमान लाभ हानि गर्मी सर्दी सब में एक समान स्थिति हो, स्थित प्रज्ञ जो स्थिति बताइए। तो हम तो नहीं ऐसे रह पाते, जब कोई हमें क्रिटिसाइज करता है या कभी कुछ अनहोनी बात हो जाती है तो मुश्किल में हो जाते हैं। तो उसके लिए हम जिसको कहते हैं ना सेल्फ मास्टरी, एक सेंस ऑफ कंट्रोल चाहिए लाइफ में। अभी आजकल हम लोग कहते हैं तनाव बहुत हो गया है, स्ट्रेस हो गया है, प्रेशर है। प्रेशर भी क्या है, हमारी अपनी वीकनेस है। अब देखिए प्रेशर में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो बाहर का प्रेशर और दूसरा हमारी अंदर की ताकत, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहें, अपनी विल पावर कहें। तो जब प्रेशर बड़ा होता है और हमारी रेजिस्टेंस कम होती है तब हम परेशान होते हैं, लेकिन जब हमारी रेजिस्टेंस अपनी स्ट्रांग होगी और प्रेशर तो कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। आप देखिए जब आप खुश होते हैं, जब आप स्टेबल होते हैं, कोई बड़ी से बड़ी समस्या भी आती है तो आप उसको क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन वो किसी ने कहा भी है ये बड़ी चीजें हम सब क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन जो माइनर हैसल्स हैं, डे टू डे जो हैपनिंग है ना, जिसको कहते हैं रेपिटेटिव हैसल्स, खाना हमें देर से मिला या कभी कोई चीज आप जल्दी में कर रहे हैं और किसी ने रास्ते में कुछ रख दिया, टूट गया कुछ, वो कहते हैं नो टाइम लेफ्ट विद शू लेस स्नैप्ड, कि आपके पास कोई टाइम नहीं है, जूते का आपका तस्मा खुल गया, उस समय आप परेशानी होगी, किसी को ब्लेम भी करेंगे। तो ये जो माइनर रेपिटेटिव हैसल्स है ना, वो किसी ने कहा कि बड़ी चीजें नहीं किसी को मैड हाउस में भेजती, लेकिन ये जो माइनर रेपिटेटिव हैसल्स हैं ये तंग करती हैं। तो उसमें स्टेबिलिटी की जरूरत है, उस समय हम पेशेंस रखें, धीरज रखें। अभी आप जैसे देखिए रेफ्रिजरेटर है, उसमें आप कोई चीज रख देंगे तो वो स्टेबल रहेगी, 2 दिन भी पड़ी रहेगी, 3 दिन भी पड़ी, लेकिन अगर बाहर वही चीज गर्मी में पड़ी रहे तो खराब हो जाएगी। तो हमारे मन में भी जब गर्मी आती है तो हमारे सारे गुण भी फीके पड़ जाते हैं, हमारी विशेषताएं भी पीछे रह जाती हैं। तो हमें बिगिन कैसे करना है, हम कैसे शुरुआत कैसे करें। अभी देखिए दिन की जो शुरुआत होती है, जिसको हम यहां अमृत वेला कहते हैं, मॉर्निंग टाइम है, मॉर्निंग में हमें सबसे पहला संकल्प ये होना चाहिए कि आज नया दिन शुरू हुआ है, कल जो हुआ वो पास्ट, पास्ट को कहते हैं ना भूत, भूतकाल, तो भूत को कोई याद थोड़ी करता है, तो वो हो गया पास्ट, उसको लगाएं हम फुल स्टॉप के, आज नया दिन शुरू हुआ है, आज मुझे इसको नए तरीके से शुरू करना है, पुरानी बातों को फुल स्टॉप, मुझे कोई भी बर्डन पहला पुराना कैरी आउट नहीं करना। मॉर्निंग के टाइम मैं मुझे क्या करना है, बाबा का, भगवान का, पेरेंट्स का थैंक्स करना है, ग्रेटफुल होना है कि जो भी कंफर्ट मिली है उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूं। मॉर्निंग में हम फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं, जो शरीर में होता है वो मन को प्रभावित करता है और जो मन में होता है वो शरीर को प्रभावित करता है। अगर हम सुबह सुबह एक्टिव होते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी प्रार्थना करते हैं, कुछ अच्छा पढ़ते हैं, अभी तो क्या हो गया, सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल फोन देखते हैं, मैसेजेस क्या है, न्यूज क्या है। तो वो क्या है, वो हमें पॉजिटिव अपने आप को नरिशमेंट देनी है। पॉजिटिव नरिशमेंट है हमारे प्योर थॉट्स। अभी आज जो हमारे महावाक्य थे शिव बाबा के, तो उसमें कहा कि लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, भोजन नहीं करते, लेकिन आप आत्माओं के लिए व्रत किस चीज का है? नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए, इम्प्योर थॉट्स नहीं हो, वेस्ट थॉट्स नहीं हो, क्योंकि मन का और आत्मा को शक्तिशाली बनाने का तो ये पॉजिटिव थॉट्स ही है ना। अपने बारे में भी हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें, क्योंकि यहाँ आके आपको पता लगा होगा, ये जानकारी मिली होगी कि असल में हम सभी शांत हैं, हम सभी आनंदमय हैं, हम सभी में पवित्रता है। ये जो बाहर आज नजर आ रहा है, ये सब एक्वायर्ड है, ये हमने बाहर से पकड़ लिया है। ये जो भी अपवित्रता है या इरिटेशन है या एंगर है या ग्रीड है, ये सब बाहर से एक्वायर्ड है। ओरिजिनली हम सब प्योर थे, अभी बन गए हैं, लेकिन अभी पुरुषार्थ करेंगे तो फिर से वो प्योरिटी रीगेन कर सकते हैं। आप देखेंगे क्लीन वाटर होता है तो क्या होता है, अंदर तक आप झांक के देख सकते हैं। एक चाइनीज सेइंग है, किसी ने पूछा हैप्पीनेस के लिए क्या करना चाहिए, उसने कहा अगर आप एक दिन के लिए हैप्पी रहना चाहते हैं तो थोड़ी मसाज करवा लें, हेड मसाज करवा लें, एक महीने के लिए हैप्पी रहना है तो गेट मैरिड, और हमेशा के लिए खुश रहना है तो बी ऑनेस्ट। तो हमारी ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। अभी क्या होता है कि हम बाहर कुछ बोलते हैं, बाहर से हम बहुत खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर हमारे टर्मोइल चल रहा होता है। जब जीवन में ट्रांसपेरेंसी होगी, अगर मान लीजिए कोई चीज हमें अच्छी नहीं लग रही, तो वी शुड एक्सप्रेस, वी शुड प्लेनली टेल कि दिस इज नॉट कंफर्टेबल विद मी, इससे मैं इजी नहीं महसूस कर रहा। क्योंकि वो कहते हैं, वैसे साइंटिस्ट भी ये कहते हैं कि जो लोग अपनी तकलीफ को एक्सप्रेस करते हैं और मदद मांगते हैं उसको ठीक करने के लिए, वो लंबा जीते हैं, उसको एस फैक्टर कहते हैं। तो अटेंशन कनेक्शन क्यों हो रहा है, अगर मुझे सिर दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आई शुड हैव क्वेश्चन, या तो मैं इरिटेटेड हूं, या मुझे नींद ठीक से नहीं आई, या मुझे इनडाइजेशन है, और फिर मैं मदद चाहिए तो आई शुड एक्सप्रेस कि मुझे ये मदद चाहिए। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि वी शुड बी ट्रांसपेरेंट, हम जो भी है ऑनेस्टली करें। अगर मान लीजिए मुझे कुछ चाहिए या कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, तो उसके लिए मैं ऑनेस्ट एफर्ट करूं। कंसिस्टेंसी चाहिए लाइफ में। अब आप देखिए ना, डॉक्टर हमें कहते हैं कि आपको वॉक करना चाहिए, आपको ये भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जाता है? वो एक भाई ने कहा था, आई कैन रिजिस्ट एवरीथिंग बट टेम्पटेशन। तो हमारे को ये सोचना है कि वो सेल्फ मास्टरी कैसे आएगी, जब मुझे ये पता लगेगा आई एम द वन हु क्रिएट्स थॉट्स, इमोशंस भी मेरी अपनी हैं, थॉट्स भी मैं क्रिएट करता हूं, चाहे हम पॉजिटिव करूं या नेगेटिव करूं, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो सुबह सुबह हमें अपने आप को एम्पावर करना है। वो एम्पावर मैंने कहा, जैसे हम थोड़ा ध्यान लगाएं, बैठें 15 मिनट, शुरू में चाहे 5 मिनट भी बैठें, लेकिन एक आदत बना लें, लेट इट बी ए हैबिट। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि कोई भी हैबिट क्रिएट करने के लिए कम से कम 3 हफ्ते चाहिए। 21 दिन आप उस काम को रेगुलरली करेंगे तो वो हैबिट बन जाएगी। घर में एक कॉर्नर क्रिएट कर दें ध्यान का, जैसे हम लोग घर में मंदिर बनाते हैं, एक कॉर्नर, जहां ये कॉर्नर सबको पता हो कि ये सेक्रेट प्लेस है, यहां हम बैठ के मेडिटेशन करते हैं। तो जब भी वहां से गुजरेंगे भी ना, तो आपको लगेगा ये ध्यान की जगह है। आपने देखा होगा यहां हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल प्ले करते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल का अर्थ ही ये है कि आपने अपने आप को अपने अंदर जाके जो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसको याद करें, कनेक्ट करते रहें। क्योंकि जो कुछ भी हमें करना है उसके लिए प्रैक्टिस तो चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो काम हम बार बार करेंगे उसमें हम प्रोफिशिएंट होते जाएंगे, कुशल बन जाएंगे। तो अमृत वेला हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। उसके बाद मान लीजिए हम तैयार होते हैं तो कुछ हम स्टडी करें, फिर हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो भी क्या होना चाहिए। कुछ लोग ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है। रिसर्च में ये भी देखा गया जो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं उनका इम्यून सिस्टम पावरफुल होता है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, बीमारी से लड़ने की ताकत। पहला सुख तो निरोगी काया है ना। अगर हेल्दी जीवन हो, अगर हम हेल्दी हैं, हमारी हेल्थ ठीक है, हमें कुछ दर्द नहीं हो रहा। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि सब तकलीफें होते हुए भी लोग बहुत खुश रह सकते हैं। मैं जब चंडीगढ़ में था तो मेरा एक दोस्त था, उसको एक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था। स्ट्रेचर पे, बेड पे उसको उठा के स्ट्रेचर पे डाल कहीं भी जाता था। उस स्ट्रेचर पे ही वो रोटरी की मीटिंग्स अटेंड करने जाता था। स्ट्रेचर पे लेटे लेटे पोइट्री भी लिखता था, ड्राइंग भी करता था। उसने अपने हैंडीकैप को हैंडीकैप नहीं समझा, क्योंकि मन पावरफुल था ना। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि वी शुड बिलीव इन आवर सेल्फ। हैप्पीनेस इज आवर बर्थ राइट, कहीं और से हमें हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। ये हमारा जन्म से अधिकार है, हमारी ओरिजिनल नेचर है। आत्मा की नेचर ही है हैप्पी रहने की। अनहैप्पी हम और कारण से, एक्वायर्ड चीजों से बनते हैं। अगर हमें संतुष्टता नहीं रहती, किसी से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी को ब्लेम करते हैं, कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती हैं, कभी हम अपने अभिमान भी हमें आ जाते हैं, ईगोइस्टिक भी हो जाते हैं, वो सारी चीजें एक्सटर्नल हैं। इंटरनली वी आर ऑल वेरी पावरफुल। वो पोटेंशियल को समझने की बात है। एक सेंस ऑफ कंट्रोल चाहिए। आप देखिए, गाड़ी हो आपके पास, कितनी अच्छी भी क्यों ना हो, कितनी तेज भी क्यों नहीं पहनते, अगर उसमें ब्रेक नहीं हो तो आप गाड़ी चला पाएंगे। तो हमारी लाइफ का भी ऐसे, हमें सेंस ऑफ कंट्रोल चाहिए लाइफ में। कमिटमेंट भी चाहिए अपने कॉज की तरफ, कमिटमेंट चाहिए, सेंस ऑफ कंट्रोल चाहिए। तो जब कंट्रोल होता है ना लाइफ में, तो हम कितनी भी मुश्किल से कोई ना कोई गाड़ी आ जाए तो हम स्टीयरिंग के कंट्रोल में होते हैं, तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। सड़क पे लिखा होता है ना, सेफ्टी सेव्स, बचाव में ही बचाव है। तो हमें ये देखना है, कोई कैसे भी एक्ट कर रहा है, कोई रॉन्ग ड्राइविंग भी कर रहा है, किसी का व्यवहार ठीक भी नहीं है, मुझे तो अपने को सेफ रखना है ना। ये नहीं कि मैं उसकी गलती निकालना शुरू कर दूं और एक्सीडेंट हो जाए तो मैं कहूं वो गलती, वो रॉन्ग साइड पे था, लेकिन नुकसान तो हो गया ना। तो हमें वो नुकसान नहीं होने देना। हमारे जीवन में एक सेंस ऑफ कंट्रोल चाहिए, जिसको आप सेल्फ मास्टरी कहें, जिसको आप ये भी कह सकते हैं साक्षी दृष्टा हो सकते हैं। गीता में भगवान ने अर्जुन को ये भी कहा ना कि किसकी चिंता करता है, ये सब तो मरे पड़े हैं, जो अधर्म में है वो तो मरे पड़े हैं। तो हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है। बहुत सी चीजें नेगेटिव हमारे पास हो रही होंगी, बट आई हैव टू बी साक्षी दृष्टा। मुझे तो ये सोचना है कि ये व्यक्ति जो है, दूसरे व्यक्ति जो गलत कर रहे हैं, इनके प्रति मेरी रहम भावना होनी चाहिए, कि इनको भी मैं कैसे बता सकूं कि रास्ता राइट क्या है। तो उसके प्रति घृणा नहीं हो, उसके प्रति मुझे ये नहीं सोचूं कि उसको छोड़ दूं, नेग्लेक्ट कर दूं। लेकिन एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग तो है। हम ये तो समझते हैं कि हम सब एक पिता के संतान हैं। और फिर दूसरा, कभी कभी हम पोजेसिव भी हो जाते हैं, अपने बच्चों के प्रति हम हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं करते, वैसा क्यों नहीं करते। अगर हम ये सोचें कि ये भी आत्मा है, ये अपना रोल प्ले कर रही है, मुझे इसको सपोर्ट करना है, लेकिन मैं इसके लिए डिसाइड तो नहीं कर सकता ना, डिसीजन तो उसको ही लेना है। तो मेरी हैप्पीनेस किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ना मैं इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट हूं। मुझे तो ये देखना है कि मैं अपने आप को बैलेंस्ड रूप से कैसे चला सकूं। अब खुशी के लिए और क्या जरूरी होता। अभी आज देखो, जो जीवन में, बाहर की दुनिया में इतनी वायलेंस है, कारण क्या है? एक तो जैसे यूं कहें कि समय ऐसा चल रहा है भारी, लेकिन दूसरा मुझे कभी कभी लगता है कि जो हमारा आचार और आहार है वो भी बहुत डिपेंडेंट होता है। अब कुछ ऐसे फूड हैं जिनको हम यूफोरिक फूड कहते हैं, जिनसे खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो हमारा जो भोजन है वो भी बहुत सात्विक होना चाहिए। सात्विक भोजन का मतलब ये है कि वो भोजन जो परमात्मा की याद में बनाया जाए और हम परमात्मा की याद में स्वीकार करें। अभी क्या, अभी तो ये क्या ऑब्सेसिव ईटिंग हो गई है, इसको हम कहते हैं माइंडफुलनेस ईटिंग, कि आप जो भी खा रहे हैं उसका एक एक जो भी कोर आप ले रहे हैं उसको एंजॉय करें और परमात्मा की याद में उसको स्वीकार करें। केवल टेस्ट की बात नहीं, कभी कभी तो हमें पता भी नहीं लगता क्या था, क्योंकि हम टेलीविजन देख रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, तीन तीन मल्टीटास्किंग करते हैं, भोजन का पता भी नहीं लगता। और वो ऑब्सेसिव ईटिंग टेलीविजन के सामने खाने के कारण ओबेसिटी भी आ रही है। तो हमारी डाइट भी जो है हमें खुशी देती है। जो डाइट हम जैसे कहते भी हैं वैसे भी कहते हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा रोग नहीं। तो अगर हम खुशी खुशी कुछ खाएंगे तो वो हमारे को लगेगा भी। अगर हम मन हमारा अशांत है, हम कहीं परेशान हैं, भोजन खा रहे हैं, कभी तो भोजन का पता भी नहीं लगेगा, खाया भी नहीं जाएगा, चिंतित होते हैं तो मन भी नहीं करता। तो इसलिए खुश रहना भी जरूरी है और खुश रहने के लिए मेहनत भी करनी जरूरी है। एंजॉयमेंट हम किसको कहते हैं? टेम्परेली एंजॉयमेंट के लिए बहुत से लोग कोई नशा करना शुरू कर देता है, कोई स्मोक करना शुरू कर देता है, लेकिन वो टेम्परेली एंजॉयमेंट मिल जाएगी, लेकिन व्यक्तित्व क्या होता है? अल्कोहल के लिए तो कहते हैं ना, फर्स्ट मैन टेक्स अल्कोहल, देन अल्कोहल टेक्स अल्कोहल, एंड देन अल्कोहल टेक्स मैन। तो ये जो आते नेगेटिव है ना, जिसमें हम खुशी ढूंढते हैं, एडिक्शंस हैं, उनमें खुशी नहीं होती है, वो उल्टा हमें ही परेशान करती हैं। लेकिन ये होता है कि हम टेम्परेरी एंजॉयमेंट के लिए भागते हैं, प्लेजर्स के लिए भागते हैं, लेकिन अंदर की हैप्पीनेस वो है सबसे बड़ी जो मैंने देखा है। हैप्पीनेस किस चीज में मिलती है? वो मिलती है गिविंग, किसी को देने में कुछ। मुझे याद है हमारे गांव में जब हम गांव में जाते थे तो हमारी दादी जी हमें ले के जाती थी, कुछ भी अनाज होता था हमारे हाथ से किसी को दिलवाती थी, फकीर कोई भी आता था। तो गिविंग का जीवन में बहुत महत्व है। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो खुशी शेयर करें, खुशी बांटें, किसी को खुशी कैसे मिलती है उसका ध्यान रखें। क्योंकि कहते हैं भी खुशी बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से घटता है। तो हम शेयर करें, गिविंग। एक व्यक्ति ने पुस्तक लिखी थी, मैं न्यूयॉर्क गया था तो उसकी किताब का नाम था व्हाई गुड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, और उसमें उसने एक ही बात लिखी थी, गिविंग। अगर आपको कुछ करना है तो देते रहो, किसी को सहारा बनो, किसी को मदद करो, किसी को हेल्प करो। कहता है अगर आप स्ट्रेंजर के सामने चलते हुए मुस्कुरा भी देते हैं ना तो वो भी कुछ देना हो गया। एक यहाँ जर्नलिस्ट आई थी तो उसने एक कहानी सुनाई अपनी, दिल्ली से जर्नलिस्ट थी। वो कहती थी रोज मैं सैर करने जाती थी, रास्ता छोटा था तो एक व्यक्ति आता था भागता हुआ, वो ये नहीं परवाह करता था मैं भी वहां सड़क पे, और चला जाता था। बहुत दिन हो गए तो मुझे लगा कि ये कैसा व्यक्ति है। तो एक दिन कहती मैंने रुक गई और उसको मैंने गुड मॉर्निंग कहा, और उस दिन से सारा कुछ बदल गया। तो ये जरूरी नहीं है कि हम सोचते हैं कि दूसरा बदले, पहले हमें शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। तो वो गिविंग जो है ना बहुत बड़ी चीज है, दातापन। और कुछ नहीं दे सकते किसी को, हम दुआएं ही दें। बुजुर्गों का क्या काम होता था, हम जाते थे, हमारी पड़दादी थी तो मिलते थे तो वो आशीर्वाद ही देते थे ना, और तो हमें वो कुछ देने के लिए सक्षम नहीं थे। तो दुआएं दें हम सबको, हर वक्त हमारे मन से गुड विशेस निकलें। अगर कोई तकलीफ भी हमें दे रहा है उसको भी कहें कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे, रादर हम उसको कर्ज करें। तो दुआएं देने से खुशी मिलेगी, कुछ न कुछ देते रहे, निस्वार्थ सेवा जो है ना उससे भरपूरता आती, बिना किसी स्वार्थ के किसी भी तरीके से आप किसी की भी मदद करते हैं। अब लोग देखो आजकल गर्मी का मौसम होता है तो पानी पिलाने के महत्व को समझते हैं, अब तो वो कंसेप्ट लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन पहले तो लोग घड़े में पानी रख के भरते थे, प्याऊ लगाते थे, अभी तो बॉटल्ड वाटर आ गया है, कहीं से भी लोग खरीद लेते हैं, लेकिन पहले लोग कितना ध्यान रखते थे। तो कहने का भाव ये जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उससे जो जीवन में भरपूरता आती है, खुशी मिलती है। अब हमारे डॉक्टर पराग और मनीषा बहन आप सबको लेके आए, उनका भाव क्या था कि जो खुशी उनको मिली है वो आपसे शेयर करें। तो ये खुशी बांटना जो है ना वो बहुत जरूरी है। किसी को कंफर्ट दें, हम ट्रेन में चल रहे हैं, कभी कभी हम आर्गुमेंट में आ जाते हैं, थोड़ा सा हट के बैठ जाएंगे, थोड़ी दूर किसी को जाना है, तो भाव ये कि हम दूसरों के लिए सहानुभूति रखें, दूसरों के प्रति हमारी काइंडनेस हो, जिसको कंपैशन कहते हैं। आप देखो महात्मा बुद्ध की जो कहानी सुनाते हैं कि वो जा रहे थे जिस रास्ते से, तो लोगों ने उनको डराया कि अंगुलीमाल है, उसका काम यही था कि वो काट के अपना वो कर देता था। तो महात्मा बुद्ध तो करुणामय थे, तो वो तो उनका तो उनको बुद्धिज्म को करुणा से ही रिलेट करते हैं। उन्होंने सिर्फ उसकी आंखों में देखा और आंखों में जो उनकी करुणा थी उसी से वो व्यक्ति पिघल गया, उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। वाल्मीकि की भी कहानी सुनाते हैं ना, वो जो धन लूटता था, लेकिन उसको सिर्फ उसने ये कहा कि ये जो लूट के जा रहे हो, ये जो पाप कर रहे हैं, इसमें आपके परिवार के लोग भागी बनेंगे, जाके उनसे पूछो, और उसको उससे एनलाइटनमेंट हो गई, उससे परिवर्तन आ गया। तो हम किसी के प्रति काइंडनेस, कोई कैसा भी हो, मैं तो ये कहता हूं हम वी आर ऑल यूनिक, हम अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, और हमें तो ये देखना है कोई फिल्म में कोई विलेन होता है, कोई एक्टर होता है, कोई हीरो होता है, कोई हीरोइन होता है, सब अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं, और हमें तो अपना पार्ट अच्छी तरह से प्ले करना है कि मेरा जो रोल है साइंड रोल, माय रोल इज यूनिक, मैं जो प्ले करूं। और जब हम कभी प्ले करते हैं या ऑडियो की रिकॉर्डिंग करते हैं, उस समय हम कितना ध्यान रखते हैं कि बाहर से कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, कुछ नहीं हो। तो ये है कि हम अपना रोल कैसे प्ले करें। हमें जो भगवान ने रोल असाइन किया है वो हीरो का है, हमें अच्छा रोल प्ले करने के लिए असाइन किया है। हमें ये सोचने कि मेरा रोल इतना बेहतर हो कि लोग वाह वाह करें। वंस अगेन, ये नहीं कि मेरा रोल ऐसा हो कि कोई मेरे को देखना भी पसंद नहीं करे। अब हमें कभी कोई अथॉरिटी मिल जाती है, पोजिशन मिल जाती है, तो हम उस अथॉरिटी को समझते हैं, चलते हैं, तो वही याद रहता है कि मैं तो ये हूं, मैं तो लैंडलॉर्ड हूं, मैं तो तहसीलदार हूं, लेकिन वो रोल है। लेकिन मेरा अपना ओरिजिनल रोल क्या है? तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब तक हम रहे उस हमारे में नम्रता भी चाहिए, ह्यूमिलिटी भी चाहिए। नम्रता से चलेंगे तो लोग हमें रिस्पेक्ट देंगे। रिस्पेक्ट कोई आपको अथॉरिटी से नहीं देता, आप जितना ह्यूमिलिटी से चलेंगे, लोगों की कंफर्ट का ध्यान रखेंगे, उससे आपको भी अच्छा लगेगा और लोग भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। जो लिविंग है वो लिविंग है क्या? इट इज आवर लाइफ, इट इज माय लाइफ। आज ये कहते हैं जो जीवन जीने का जो तरीका बन गया है ना, दैट इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ इलनेस, चाहे वो हार्ट अटैक है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो एक्सीडेंट्स हैं। जिस तरह से हम जीवन जी रहे हैं, अगर उसको करेक्ट कर लें तो बीमारियां तो अपने आप भाग जाएंगी। तो इसलिए बीमारियों को या किसी दुख रोग से मुक्ति का भी कारण यही है कि हमारा फॉल्टी लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, हम बैठे रहते हैं, एक्टिव नहीं होते, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी नींद, स्लीप हमारी कितनी, क्या रिफ्रेशिंग है स्लीप, जब हम सुबह उठते हैं तो हम अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। तो नींद भी बहुत जरूरी है लाइफ को बैलेंस चलाने के लिए, लाइफ में हैप्पीनेस रहे। क्योंकि आप देखिए, हम दिन भर काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, थक जाते हैं। अगर मान लीजिए सुबह भी उठे वही थके हुए हाल हो तो हम कैसे खुश रहेंगे। नींद तो हमें रिफ्रेश करने के लिए है ना, स्लीप तो हमें एनर्जाइज करने के लिए है। तो अगर हमें अच्छी नींद आए, 6-7 घंटे हम आराम से नींद कर सकें, तो उससे भी हम रिफ्रेश्ड महसूस करेंगे। लेकिन नींद भी कब डिस्टर्ब होती है, जब मन में कोई बात बार 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 बार। अब आपको देखिए, आपको मान लीजिए जो लोग जॉब करते हैं, उनके बॉस ने अगर उनको बुला के 2 मिनट के लिए कुछ कह दिया, उसने तो 2 मिनट लगाए, लेकिन वो कई दिन तक आपके मन में बात घूमती रहेगी, जिसको हम ब्रूडिंग ओवर कहते हैं। बार बार सोचते रहेंगे, ऐसा मुझे क्यों कहा, मुझे ही कहते हैं, मुझे ही सुनाते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे जीवन की वैल्यू भी तो हम समझे ना। मेरी लाइफ की भी वैल्यू है, मेरे विचारों की भी वैल्यू है, मेरा टाइम कितना वेस्ट गया उस बात को सोच सोच के। अगर हम उस समय फुल स्टॉप लगाएं, इतना सोचें ये इस व्यक्ति का रोल था, ये उसकी हैबिट है, ही शुड बी फीलिंग सॉरी रादर देन मी। मैं तो अपने आप को मैनेज करूं ना, अपने आप को संभालूं। कोई ठोकर लगती है तो हम क्या करेंगे, पत्थर को थोड़ी क्रिटिसाइज करेंगे, हम तो अपने आप को संभालेंगे ना। तो इसलिए हमें अपने आप को संभालना है। हमारा जो फोकस है दैट शुड बी विद इन अस, नॉट आउटसाइड। ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए। कभी हम ये कहते हैं ये ठीक हो जाए ना तो मैं हमेशा के लिए खुश हो जाऊंगा, ये बदल जाए, ये आदत छोड़ दें। अब उनकी आदत पे तो आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन अपने आप पर तो आपका कंट्रोल है ना। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी लाइफ को रेगुलेट करें, अपनी लाइफ का चार्ज हमारे हाथ में हो, हमारी लाइफ दूसरों के हाथ में नहीं हो। जैसे हमारा रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में चला जाए, जैसे वो चलाए, जिस तरह से जो स्विच वो दबाए वही इमोशन हमारे जीवन में आ जाए, नहीं। हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, बहुत जरूरी है। एक और चीज जो मदद करती है हमें, वो ये है कि रात को सोने से पहले हम थोड़ी देर पॉज दें, कोई नोटबुक रखें, उसमें जो सारे दिन में हुआ वो लिखें। कुछ भी हुआ है, कुछ नेगेटिव हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, उसको लिख दें। यहां तो हमें ये सिखाते हैं कि रोज रात को सोने से पहले बाबा को पत्र लिखो, शिव बाबा को एक पत्र लिखो सोने से पहले, उसमें सब कुछ लिख दो, जो भूल हुई है वो भी लिख दो, जो अच्छा काम हुआ वो भी लिख दो, जो माफी मांगनी है वो भी लिख दो। बस उस पत्र को तकिए के नीचे रख दो, सुबह उठोगे तो क्लियर होगा, उस पत्र को आप फेंक दें, जला दें। मतलब ये लिखने से भी, ये डेली जर्नल राइटिंग से भी बहुत कुछ फर्क पड़ता। ये आपने रोज सोने से पहले लिख दिया, अगले दिन की शुरुआत फिर नई होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने आप से अपने जज खुद बने, कोई हमारा जज नहीं बने। हम अपने आप को जज करें कि हमारे से राइट क्या हुआ, रॉन्ग क्या हुआ, वो सब राइट करें। बाबा को क्योंकि हम मात पिता बंधु सखा सब मानते हैं ना, तो उनको माता पिता ही समझ के लिखें पत्र, रोज सोने से पहले लिखें कि आज सारे दिन में क्या हुआ, किसको मेरी वजह से दुख तो नहीं मिला, किसको मेरी वजह से अनकंफर्टेबल तो नहीं फील हुआ, मैंने कोई रॉन्ग कर्म तो नहीं किया। जो किया वो लिख दें। लिखने से मन से बोझ हल्का हो जाता। आपने लिख दिया, वो क्रिश्चियनिटी में तो दिखाते हैं ना, उनके कन्फेशन बॉक्स होता है, वो जाके चर्च में वो कन्फेशन बॉक्स में खड़े होके बोलते हैं। हमें वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आप से वायदा करना है कि कल मैं कैसे आरंभ करूंगा, कल मेरा जीवन कैसे आरंभ होगा। तो वो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हम अपने आप में बिलीव करें, अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करें। कभी कभी अपने आप में हम सेल्फ डाउट क्रिएट कर लेते हैं, वो भी नहीं चाहिए। हम पावरफुल हैं। यहाँ हमें यही समझाया जाता है कि हम अलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, तो हम मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी हैं। पर ये नहीं कि हम भूल नहीं कर सकते, भूल की तो उसको उस समय अपने आप से एक प्रॉमिस करें कि ये भूल मैं दोबारा नहीं करूंगा, उस भूल से सीखें। फेलियर्स भी पार्ट ऑफ सक्सेस हैं। अगर हम फेल होते हैं तो उससे डिस्करेज नहीं होना है, लेकिन अगले दिन उससे ये सोचना है कि आज मैं जो करने वाला हूं कल से बेहतर होगा। तो इसलिए ये लिखना जर्नल बहुत जरूरी है। और दूसरा ये है कि हम कभी कभी क्या होता है, मैंने ये भी देखा बहुत से लोग काम में इतना बिजी हो जाते हैं, जिनको हम वर्कहोलिक्स कहते हैं। लोग कह देते हैं वर्क इज वर्शिप, पर हमारे जीवन में सभी पहलू चाहिए। हमें अपना प्रोफेशन भी संभालना है, काम भी करना है, परिवार को भी संभालना है, कुछ सोशल कमिटमेंट भी चाहिए। मुझे याद है मेरे साथ एक आईएएस ऑफिसर काम करते थे, वो हर सैटरडे को हॉस्पिटल में आते थे, मैं जब चंडीगढ़ में काम करता था तो वो वार्ड में राउंड करते थे। मेरे से पूछा मैं क्या करूं, मैंने कहा आप डिसाइड करो, एक बार राउंड करो। तो पेशेंट के पास जाते थे, किसी को अपनी चिट्ठी लिखनी होती थी, किसी को कोई और कोई, किसी को छुट्टी हो रही थी तो उसकी टिकट बुक करवानी थी, उसकी वो टिकट बुक करवाते थे। ये छोटी छोटी चीजें थे। तो हम कुछ ना कुछ सोशल सेवा भी जरूर करें, कुछ ना कुछ, और उसके साथ साथ हमारी अपनी कोई हॉबी भी होनी चाहिए। यानी एक चीज, एक पिलर पे हमारा लाइफ डिपेंडेंट नहीं हो। अब मान लीजिए आप काम पे लगे हुए हैं, काम पे लगे हुए हैं, अब जिस दिन आप रिटायर हुए या काम बच्चों को सौंप दिया, उस दिन क्या, उस दिन समझेंगे अब मैं क्या करूं। तो पहले से ही हमारी लाइफ इट शुड बी बेस्ड ऑन मेनी पिलर्स, एक एक पिलर पे नहीं हो, काम काम काम। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, लेकिन परिवार को भी मैनेज करें, कुछ हॉबी भी होनी चाहिए, कुछ समाज सेवा का भी काम करें। तो उससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि अभी मुझे आगे क्या करना है, आपके लाइफ में वैक्यूम नहीं आएगा। और फिर उसके बाद आता है कि कुछ समय हमें अपने जीवन में अपने आप से बिताना चाहिए, जिसको हम साइलेंस कहते हैं, क्वाइट टाइम। कि ये टाइम क्वाइट टाइम है, मैं अकेला घूमने चला जाता हूँ कभी कभी, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, वो म्यूजिक भी नहीं लगाने की जरूरत, जस्ट रिफ्लेक्शन के लिए टाइम हो। वी रिफ्लेक्ट ऑन आवर ओन लाइफ कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव है। अगर मान लीजिए मैंने यहां, जैसे हमें सिखाते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य से देवता बनना, नर से नारायण बनना या नारी से लक्ष्मी बनना, तो वो रिफ्लेक्ट करूं कि मैं कहां तक पहुंचा हूं। वो रिफ्लेक्शन चाहिए, वो क्वाइट टाइम चाहिए। कभी कभी हम बातों में बहुत लग जाते हैं, जिसको हम बाह्य मुक्ता कहते हैं। इंट्रोवर्ट होना भी जरूरी है, उससे हमारी एनर्जी सेव होती है, उससे कभी कभी हम बहुत बड़ी मुश्किलों से भी बच जाते हैं। जब हम ज्यादा बोलते हैं ना, कभी कभी कुछ ऐसा भी बोल देते हैं किसी को हर्ट करता है, कुछ अपनी अंदर की बात बता देते हैं, फिर बाद में वो लोग कहते हैं आपने ही तो बताया था आप ऐसा करते थे। तो साइलेंस में रहना भी बहुत जरूरी है, क्वाइट रहना भी बहुत जरूरी है, क्वाइट रिफ्लेक्शन चाहिए। हम अपनी प्रोग्रेस को देखते रहें, जांच करते रहें, मैं कहां तक पहुंचा हूं, अपने चेकर खुद बने। क्योंकि लाइफ जो है एंजॉय करने के लिए है, ना तो हम किसी को क्रिटिसाइज करें, ना किसी के क्रिटिसिज्म से प्रभावित हों, वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमें यहां ये रियलाइजेशन होती है कि मैं आत्मा ओरिजिनली शांत थी, प्रेम स्वरूप थी, आनंद स्वरूप थी, लेकिन ये अभी एक्वायर हुआ है, मुझे वो अपनी ओरिजिनलिटी रिगेन करनी है। वो ओरिजिनलिटी रिगेन करने के लिए थोड़ी एफर्ट तो करनी पड़ेगी, थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान भी देना पड़ेगा। अब मेडिटेशन या राजयोग थोड़े बड़े शब्द हैं, लेकिन हम तो वैसे नॉर्मली तो कहते हैं ना ध्यान है, हम ध्यान में बैठे हैं। तो हमें अपनी लाइफ में भी ध्यान से चलना है। ध्यान का दूसरा मतलब ये भी है, केयरफुली चलना है। कभी कभी हम रश में होते हैं, हमें अपने जीवन को थोड़ा स्लो करना है, एक समय में एक ही काम करना है, मल्टीटास्किंग नहीं। अभी हमारे यहाँ एक बहन है, शी इज द ओनर ऑफ ए होटल, एक दिन वो फोन लेके चल रही थी सीढ़ियों पे तेज तेज, पैर स्लिप हो गया तो गिर गई, चोट लगी। उसके बाद उसको कितने दिन बिस्तर पे लेटना पड़ा। हम कभी जल्दबाजी में दो दो तीन तीन चार चार काम एक साथ करना चाहते हैं, तो हम स्लो डाउन करें। अपनी लाइफ में हमें स्लो डाउन करने की जरूरत है, पॉज चाहिए। सोच के करें, जो भी करें ध्यान से करें। वो कहते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक। तो इसलिए बहुत हमारी लाइफ को हमें ये समझना है कि लाइफ मोस्ट प्रेशियस है, मोस्ट वैल्यूएबल है, इसको हमें संभाल के रखना होता है। कोई डायमंड होता है, गोल्ड होता है, हम उसको कितना सेफली रखते हैं। आप ये सोचिए, हमारी लाइफ तो वर्थ मिलियंस ऑफ डायमंड्स है। हमारा जीवन बहुत वैल्यूएबल है, इस जीवन में है तो हम कुछ कर पाएंगे। वो कहते भी है ना, इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ आवर वैल्यूज आर लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो हमें अपनी अपने आप की वैल्यू समझनी है, उसको लुक आफ्टर करना है। तो यहां हमें यही सिखाया जाता है कि जो हमारी ओरिजिनल वैल्यूज हैं, जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रेंथ है, वो इस बात को रियलाइज करने में है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, हम भगवान की संतान है। तो जब भगवान की संतान है तो हम भगवान का शो भी तो करें ना। हम कहते हैं हम भगवान की संतान है, पर हमारे कर्म कैसे, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। तो ये हमारे मन में अवेयरनेस रहनी चाहिए, जागृति रहनी चाहिए कि मैं कौन हूं। दादी जान की, हमारी बड़ी दादी थी, हेड भी रही ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो तीन बार ओम शांति करते थे। तो उनसे हमने पूछा कि तीन बार क्यों कहते, तो कहते पहली ओम शांति है कि मैं कौन हूं, दूसरी ओम शांति है कि मुझे मेरा कौन है, और तीसरी ओम शांति है मुझे क्या करना है। तो ये चीज हमें हमेशा चेक करते रहना चाहिए, मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे क्या करना है। ये चेक चाहिए जीवन में। अगर हम चेक करते चलते हैं तो प्रोग्रेस बहुत बढ़िया होती है। तो ओम शांति का अर्थ ही यही है कि मैं शांत स्वरूप हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, और मेरा जीवन कितना वैल्यूएबल है। तो उसकी वैल्यू को पहचाने। हमारे एक एक मिनट की वैल्यू है, एक एक श्वास की वैल्यू है। तो अगर इस तरह से हम अपना जीवन जिएंगे, अपने लिए एक रिजॉल्व करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी खुशी को कोई हाथ लगा सकता है, हमारी खुशी को कोई अफेक्ट नहीं कर सकता। हम अपनी खुशी के मालिक खुद हैं। बाकी हैप्पीनेस जो है, इट इज ए वे ऑफ लाइफ, इट इज ए वे ऑफ लिविंग। इट इज नॉट कि ये हम कर लेंगे तो खुश होंगे, हम अपना घर बना लेंगे तो खुश होंगे, हम ये कार खरीद लेंगे तो खुश होंगे। नहीं, खुशी इज बियॉन्ड दैट। तो इसलिए हम अपने जीवन को मैनेज करना सीखें, वो चाहिए। सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। अब हम जब फ्लाइट में भी जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, जब कभी क्राइसिस हो तो पहले अपने मुंह पे मास्क लगाएं, फिर दूसरे की मदद करें। तो पहले हम अपने आप को मैनेज करें, फिर दूसरों को देखें, दूसरों की संभाल करें। तो की जो थिंग है वो है सेल्फ मास्टरी। हम अपने मास्टर बने, हम अपने खुद मालिक बने, तो लाइफ में बहुत मजा है। मुश्किलें आएंगी नहीं, अगर मुश्किलें आएंगी तो हमको इजीली जंप कर पाएंगे। बुद्धि में ये भी रखना कि हमारा साथी कौन है। वो कहते हैं ना, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो जब उसको अपना कंपेनियन बना लिया तो वो मुश्किल भी मुश्किल नहीं लगेगी। हम अपनी लाइफ में ही देखें, जो चीजें हम आज से 10 साल पहले हमें मुश्किल लगती थी, आज वो मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि हमारे में मैच्योरिटी आ गई है, हमारे में विजडम आ गई है। जब हम डिफिकल्टीज को समझ लेते हैं तो फिर वो मुश्किल नहीं रहती। तो हमारे सारे जीवन का सार यहाँ, जब आप आए हैं, आपने ये समझा है, इस ज्ञान का सार ही यही है कि सेल्फ मास्टरी, हमें अपना मालिक खुद बनना है। ओम शांति। कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, 5-7 मिनट हैं। नहीं, क्वाइट टाइम का मतलब ये, यू टेक ए ब्रेक। आपने एक ब्रेक ले ली अपने बारे में सोचने की, रादर देन रिफ्लेक्टिंग ऑन योर ओन सेल्फ। उसमें ज्यादा विचार भी चलाने की जरूरत नहीं है, स्लो डाउन। उसमें जस्ट एक थॉट भी हो उस पर भी रिफ्लेक्ट करते रहें, और दैट कैन बी मॉर्निंग टाइम, दैट कैन बी इवनिंग टाइम, लेट इवनिंग टाइम, बिफोर गोइंग टू बेड। टाइम तो इट इज, यू नो क्या बोलते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू डू ए थिंग इज प्रोपोर्शनेट टू द टाइम अवेलेबल। तो जितना टाइम आप निकाल सकें वो बहुत अच्छा, क्योंकि बिजी लाइफ है। तो
बहुत सारे वैल्यूएबल टिप्स के लिए भाई साहब का जोरदार कटल ध्वनि से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद भाई जी, थैंक यू। अभी मैं हमारे आदरणीय स्नेही पराग भाई जी और मनीषा बहन जी को इनवाइट करती हूँ, वो पूरे ग्रुप की तरफ से आभार व्यक्त करने के लिए भाई साहब को सौगात देकर सम्मानित करना चाहते हैं। पराग भाई जी, मनीषा बहन जी।